نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 42 آیت نمبر 45 سے 63 سورة آل عمران. لیسن نمبر 42 آیت نمبر 45 to 63 سورة آل عمران. براہ راست آیتوں پہ چلنے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ. ہمارا آج کا سبق جن سوالوں کا جواب دے گا اس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور لوگوں کے ان کے بارے میں شبہات کیا تھے. دوسری چیز آج کے سبق میں جو ہم دیکھیں گے معجزے میں اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے. اگلی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ کیسے اٹھایا گیا. تفصیل سے آج کی آیات میں یہ واقعہ آئے گا ہمارے سامنے. یہ تو وہ بنیادی واقعات ہیں جن کو آج ہم دیکھیں گے لیکن ان سب کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں گے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. خاص طور میں جس میں مرد اور عورت کا تنہا بیٹھنا یا اس کے اندر ان کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہود کا بغض تھا اس کی وجہ. تو آئیے دیکھتے ہیں سبق چونکہ کہانی کی طرح ہے اس لیے بہت ساری باتیں ہمیں آیات کے ساتھ ساتھ ہی سمجھ آئیں گی. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 45 سے. پیچھے والی باتوں کو اگر آپ ابھی بھی ذہن میں رکھ لیں جس پہ ہم نے پچھلا سبق چھوڑا تھا, تو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی جوانی کی عبادت کا تذکرہ ہو چکا. جوانی میں عبادت کرتی تھیں, فرشتے نے آ کر ان کو خوشخبری دی کہ آپ چنی گئیں. ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ چنے جانا چاہتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی شاپنگ مال میں ہوں اور فرشتہ آ کے کہہ دے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا. یہ پچھلی آیتوں میں آپ نوٹ کر لیں اگر آپ کو وہاں کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے کہ جب فرشتے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اور مریم اس وقت عبادت میں تھی. تو یاد رکھیے کہ چناؤ کے لیے پہلے بندے کو رب کا بندہ بننا پڑتا ہے. اب ہم چلیں گے آیت نمبر 45 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قالت الملائکۃ, جب کہا فرشتے نے, یا مریم, اے مریم. پیچھے بھی فرشتے کا تذکرہ تھا یہاں بھی ہے, اس سے لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار ان کے پاس فرشتے آتے تھے. اور یہاں ملائکہ کا لفظ دیکھیے جمع کا ہے, ملک واحد ہے, ملائکہ جمع ہے. جب فرشتوں نے کہا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایک سے زیادہ بار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے. کیا کہا؟ یا مریم, اے مریم, نام لے کر پکارا. یہ واحد عورت ہے جس کا نام قرآن پاک میں ہے, ان کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے. تذکرہ تو بہت ساری عورتوں کا ہے لیکن نام کسی کا نہیں ہے حضرت مریم علیہ السلام کے سوا. ان اللہ یبشرکی, بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے. یہ جو کاف کے نیچے زیر ہے نا یہ مؤنث کی ہے. پچھلے پاروں میں ہم نے گول تا کو بہت دفعہ دیکھا کہ یہ تا تانیث کی ہے, مؤنث کی ہے. اسی طرح تا کی ایک اور علامت کیا ہوتی ہے کہ کاف کے نیچے زیر آتی ہے. کہاں؟ جیسے یہاں دیکھ لیجئے, یبشرو کی, اور یہ کب ہوتا ہے؟ فعل کے اندر ہوتا ہے. یعنی جب عورت کے کسی کام کے کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر وہاں مؤنث کی بات آتی ہے. کس بات کی خوشخبری دیتا ہے؟ بکلمت منہ, ایک کلمے کی اپنی طرف سے. یہ کلمہ کیا ہے؟ تو لکھ لیجئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. عام حالات میں ماں کے ساتھ باپ کا پانی ملتا ہے تو پھر بچے کی تخلیق ہوتی ہے. لیکن سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو شوہر اور بیوی اپنی پوری خواہش اور کوشش کے باوجود بچہ حاصل نہیں کر پاتے. تو جو کن شوہر اور بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہی کن حضرت عیسیٰ کی ولادت میں بی بی مریم کی طرف ہوا. روایات میں بہت کچھ آتا ہے جس سے کوئی عمل کی بات نہیں لیکن یہاں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بالغ ہوئیں, پیوبرٹی کی ایج پہ آئیں اور اپنے پیریڈ سے فارغ ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے پھونکا, یعنی نفخہ جس کو بولتے پھونکنا, تو اس کا اثر ان کے رحم تک گیا اور اللہ کے حکم سے بی بی مریم جو تھی وہ حاملہ ہو گئی. कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आम हालात में बच्चे पैदा होते हैं वो अमल भी कोई बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। और अगर हम अपनी आंखों से ये चीज़ें दिन रात ना देखें तो एक बच्चे का वजूद, उसके सारे मराहल, दुनिया में आना, उसका पलना बढ़ना, ये हमारे लिए यकीन के काबिल बात नहीं थी। तो लिहाजा जिसको अल्लाह ताला की कुदरत, फ़इन्ना मामरुहु इज़ा अराद शैयन, उसका अमर क्या है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो फ़यकूलु लहू कुन फ़यकून, तो उसको कहता है हो जा और वो हो जाता है। कायनात में अल्लाह ताला के हुक्म से ही सब कुछ बना, लेकिन तीन चीज़ों के बारे में आता है कि उनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। उसमें एक आदम अलैहिस्सलाम, उनकी तख्लीक, दूसरी जन्नत अदन जो एक ख़ास जन्नत है, हमेशगी की जन्नत, और तीसरी तौरात। ये तीन चीज़ों के बारे में आता है कि ये कुन की बजाय अल्लाह ने इनके प्रोसेस से इनको गुजारा। तो बहरहाल कलीमतिम या कलीमतुल्ला जो है ये हज़रत ईसा का लकब है, और पीछे हमने हज़रत यहया के किस्से में पढ़ा था कि उनकी खूबियों में क्या एक खूबी होगी कि वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेंगे। ठीक है, तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्या होंगे वो? इस्महु, उनका नाम अल मसीह ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। ये हज़रत ईसा का नाम है, पूरा नाम कोई आपसे पूछ सकता है? तो अल मसीह उनका लकब था। मसह से मीम सीन हा रूट है। इनको मसीह क्यों कहते हैं? इसकी दो मारूफ वजूहात किताबों में दी जाती हैं। नंबर एक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी बीमार को मसह करते, छूते, टच करते, तो अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाता था। तो बास कहते हैं कि इस वजह से, टू टच के मानों में। इसी तरह मसह का लफ्ज़ जो है ना सियाहत से है, बास कहते हैं ये मशी है। कौन सा मशी? जो पीछे हमने पढ़ा, कुल्लमा असलम अलैहिम कामू, जब कभी उन पे अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं, और उसका ऑपोजिट मशऊफी, चल पड़ते हैं। दूसरे ही रुकू में पढ़ा था सूरत बकरा के, तो वही मशऊ, मशा, चलना। तो मसीह या सियाहत या टूरिज्म, हम सब अपनी जबान में जानते हैं, बहुत ट्रेवल करने वाले को कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीन फैलाने के लिए और लोगों की इस्लाह के लिए बहुत हिजरतें की थी, बहुत चलते फिरते थे। यानी उनका टूरिज्म सिर्फ वर्ल्ड टूर नहीं होता था बल्कि बामकसद होता था। तो ये वहाँ जाते थे और अल्लाह सुबहाना ताला ने इसी वजह से इनको मसीह कहा था। तो बहरहाल कोई भी हो, इसी से लफ्ज़ मसीह दज्जाल भी है। जिस तरह नसारा के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह है ना, इसी तरह ज्यूस के लिए दज्जाल मसीह होगा। वो जहाँ बात आएगी पढ़ेंगे, लेकिन कहीं आप कहीं पढ़ें तो आपको लगे ना कि आपने क्यों नहीं पढ़ा ये, इसका मतलब तो सिर्फ एक इशारा करना मकसूद था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता था। ईसा उनका अपना नाम था, ईशो सरदार को कहते हैं, इब्ने मरियम इनकी कुनियत है, मरियम का बेटा। अब आप देखिए कि हज़रत ईसा वाहिद वो शख्स हैं, हज़रत यूनुस के साथ भी आता है इनके अलावा, अगर आप देखें कि जिनकी निस्बत माँ से है। पूरे कुरान में जहाँ भी नबियों की बात हुई तो बाप के नाम के साथ है ना, जैसे ईसा का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ, राइट? इसी तरह से देखिए कि ईसा वाहिद है जिनकी निस्बत माँ की तरफ है। इतने तरद्दत की ज़रूरत ही नहीं थी अगर लोगों के आज के जो ख्यालात हैं हज़रत ईसा के बारे में वो सुन लिए जाए कि नहीं बाप तो था लेकिन ये नहीं था वो नहीं था। तो बहरहाल ये एक वो दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे। कैसे होंगे वो? वजीहन फिर दुनिया वाल आखिरा, बहुत मर्तबे वाला होगा दुनिया और आखिरत में। वह मिनल मुकर्रबीन, और बड़े करीबी लोगों में से होगा, यानी मुकर्रबीन बारगाह में से होगा। वजीह का लफ्ज़ वजहुन से है, पीछे हम पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा, वजह चेहरे को कहते हैं, वजूह, वजूह हुई या उम इज़िन खाशिया, और वजूह हुई या उम इज़िन मुसफिरा। ठीक है, तो वजूह और वजह भी इसी से। अब ये चेहरे वाला होगा, अगर लफ्जी तर्जमा देखें तो चेहरे वाला होगा, मुराद क्या कि वजाहत। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो थी वो अनयूजुअल तरीके से हो रही थी, और फी ज़माना उस तरीके को लोग बर्दाश्त नहीं करते, यानी ऐसे बच्चे को लोग बाज़ दफ़ा वलदुज़्ज़िना समझ लेते हैं, बस जब ऐसे बच्चे को लोग बातें करते हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी वजाहत दी थी, ये वजाहत लफ्ज़ भी इसी से है, वजीहा लफ्ज़ भी इसी से ही है, इतनी वजाहत दी थी कि कोई इनके मुंह पे इनको कुछ नहीं कह सकता था। आगे पीछे बहुत कुछ बोलते थे कि बिन बाप का है और फलां और फलां, और बस कहते हैं कि इनकी हरकत हिजरतों में एक ये भी वजह थी कि जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचते तो यहूद की तरफ से प्रोपेगंडा उनके खिलाफ कर दिया जाता, लेकिन ये कि इनके मुंह पे आके कोई कुछ नहीं कह सकता था। तो वजीह कहते हैं वो शख्स जिसके रोब की वजह से लोग उसके मुंह पे कुछ ना कह सकें। हम बाज़ वो कहते हैं फलां आया खरी खरी सुना गया, मुझे ये कह गया, बाद में याद आता है उसने ये क्यों कहा, मैं कुछ और कहती। तो याद रखिए कि आप खुद लोगों को माइल करवाते हैं, आप खुद लोगों को जरूरत देते हैं और इजाजत देते हैं कि वो आपको कुछ कहें। वजीह शख्स जो होता है ना तो वो किसी का मजाक उड़ाता है ना मजाक को उसका उड़ाता है, यानी लोगों को अगर आप उनकी लिमिट में रखें तो लोग कभी भी आपके साथ इस तरह का मामला नहीं करेंगे। बहरहाल बता दिया कि वो आखिरत में मोअज़्ज़ज़ होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वजीह भी थे और इज्जत भी थी, आखिरत में भी मोअज़्ज़ज़ होंगे और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होंगे। इनकी कुर्बत क्या होगी? आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया में जिसको भी जिस चीज़ से महरूम रखा है आखिरत में अल्लाह ताला उसको उस नेमत से फैजयाब करेगा। तो इसी तरह से जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह की बात करते थे और लोग उस बात को सुनना नहीं चाहते थे या सुन के भी अनसुनी कर देते थे, तो अल्लाह ताला ने इसका बदला उनको दुनिया और आखिरत की इज्जत की सूरत में दिया। फिर क्या होगा? आखिरत में भी मुकर्रबीन होंगे। आयत 46, वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और वो लोगों से गुफ्तगू करेगा गोद में भी और पूरी उम्र का होकर भी। युकल्लिमु क्या है? कल्लम युकल्लिमु तकलीम, कलाम करना लोगों से। फिल महदी, महद कहते हैं गोद को, माँ की गोद, ठीक है, मिहादा का लफ्ज़ आप पढ़ते हैं, यानी ज़मीन भी हमें माँ की गोद की तरह ले लेती है। और कहलन कहते हैं कहूलत की उम्र, 40 साल के बाद की उम्र, 40 की जो एज होती है ना ये कहूलत की होती है। अब सवाल पैदा होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में क्या बात की और कैसे की? इसके बारे में सूरत अल मरियम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुबहाना तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कलाम जो है पेश किया कि जब अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया माँ के बेगुनाही को साबित करने के लिए इन्होंने क्या अल्फाज बोले थे, आप आयत का नंबर नोट कर लीजिए और फिर उसका तर्जमा आप अपने हाथ से लिखिए। और आज के सारे ही क्रिश्चियन नज़रियात का तोड़ है उसमें कि जो हज़रत ईसा के बारे में बातें करते हैं, अगर हम ये बात उनको कह सकें कि देखिए कुरान के ऊपर तुम्हारा ईमान है, होगा ईमान, कोई आज तक ये नहीं कह सके कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। और ये भी अंदर से सबको पता है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है और उसको अल्लाह ने गलतियों से पाक रखा है। तो उसी में सूरत मरियम की आयत नंबर 30 और उससे अगली आयत में आता है आला, किसने कहा? ईसा ने, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। पहला लफ्ज़ अब्दुल्लाह, ये नहीं कहा कि इब्नुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, मुझे किताब दी गई। देखिए पैदा होता बच्चा क्या कह रहा है, खिलौने दिए, दूध दिया, चूसनी दी, नहीं मुझे किताब दी। वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंतु, और मुझे बाबरकत बना दिया जहां कहीं मैं रहूं, जमीन पे रहूं, आसमान पे रहूं, हिजरत करूं, एक जगह जाऊं, मैं जहां जाता हूं वहां बरकतें ही बरकतें। वह ओसानी बिसलाह, और मुझे नमाज का हुक्म दिया। सोचिए जरा, एक गोद के बच्चे के ये अल्फाज हैं, नमाज की अहमियत इससे समझें। व ज़का, और ज़कात का कब तक? मा दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं, यानी मरते दम तक नमाज और ज़कात का हुक्म सिर्फ इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी था। व बर्रम भी वालिदती, यहाँ भी नोट कीजिए जुमला, और मुझे हुक्म दिया कि माँ के साथ अच्छा मामला करूं। अमूमन कुरान पाक में जब वालदैन का तज़किरा आता है तो क्या आता है? बिल वालिदैन। कहीं गलती भी नहीं लगी कुरान में कि कहीं हज़रत ईसा के साथ वालदैन की बात कर दी जाए। बी वालिदती, मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मैं बदबख्त और जब्बार नहीं हूँ, यानी मेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं है, कहर नहीं है। वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ। व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये है हज़रत ईसा का कलाम आयत नंबर 33 तक। आयत नंबर 30 से 33, 30 से 33 हज़रत ईसा अलैहि सलाम का कलाम है। और इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिक ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम, कौल हक लज़ी फ़ीही यमतरून, ये वो बात है सच्ची जिसके ऊपर लोग शक करते हैं। तो गोया कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने बचपन में कलाम किया। अनयूजुअल बात है ना, कभी छोटे बच्चे को बोलता देखे कैसा लगता है। हदीस में आता है कि 3 बच्चों ने बचपन में कलाम किया, एक हज़रत ईसा अलैहि सलाम जिनके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई शुबा नहीं है, दूसरे असहाबुल बुरूज जिसका तذکرہ 2-3 दिन पहले के सबक में भी आया था, उसमें एक बच्चे ने जब उसकी माँ को आग में डालना चाहा तो उस बच्चे ने माँ को तसल्ली दी कि माँ मेरी वजह से पीछे ना हटना, वही आग की जो भट्टियाँ थी। और इसी तरह एक साहिब जुरैच, यानी जुरैच नाम का एक शख्स अहले किताब में, जिसको उसकी माँ ने बद्दुआ दी थी कि तुम्हें मौत ना आए जब तक कि तुम किसी फहिश औरत का मुंह ना देख लो, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने एक ऐसी आजमाइश में डाला कि एक फाहिशा ने उन पर जिना का इल्ज़ाम लगा दिया और लिहाजा फिर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के गई। तो उस वक़्त वो गोद का बच्चा बोला था उस शख्स की बेगुनाही में। इसी तरह एक दो वाक़ तो और भी मिलते हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या ये मुश्किल है। छोटे बच्चे हूँ हाँ ऊँ आई तो करते ही है ना, तो अगर आप उस ऊँ आओं को मामा पापा में बदल दें और इन जुमलों में बोल दें, अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन जो लोग मौजजात का इनकार करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि अल्लाह सुबहान तआला की कुदरत का इनकार करते हैं, उनको ये बड़ा मुश्किल लगता है, कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, वो तावीलात करते हैं। तो हमारा ईमान है कि हज़रत ईसा बोले। और अक्सर एक जुमला मैं बोलती हूँ, आज भी बोलना चाहूँगी, कि जिस तरह हज़रत ईसा को ज़ुबान मिली तो इन्नी अब्दुल्ला कहा, आज भी किसी बच्चे को जुबान मिले तो वो भी यही कहेगा इन्नी अब्दुल्ला। ये क्यों? नूरे फितरत। हदीस में आता है कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। वो जो अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा अल्लाह ताला ने सबसे ले रखा है, वो बच्चों को याद होता है। हदीस में आता है कि जब तक बच्चे की जुबान नहीं खुलती, यानी हमारी सिखाई हुई बातें वो नहीं बोलता, तब तक उसको वहद याद रहता है। इसलिए बात जगह आपने सुना होगा कि बच्चों में वो खूबियाँ होती हैं कि अगर बड़ों में हो जाएं तो वो वलीउल्लाह बन जाएं, दिल में बात नहीं रखते, झूठ नहीं बोलते, और अभी रूठे अभी मान पड़े, एक आंख से हंसते हैं तो एक आंख से रोते हैं, कोई जितना मर्जी कह दो ये बोल दो वो नहीं बोलते, उनके दिल में जो होता है वही बोलते हैं ना। आप कभी बच्चों से झूठ बुलवा के तो देखें, वो नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे मैं क्यों बोलूँ, जो सोचते हैं बस वही करते हैं ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा एक हमने कल तजुर्बा किया, मेरी वालदा हैं तो उन्होंने भाई की बच्ची है, तो मैंने कहा मेरी से बात कराए ना, तो उसको बात कराया, वो बच्ची है, उसको जो कहें वो बोलती जाती है। तो मम्मी ने उसको कहा बोलो पुप्पो को, पुप्पो आप कब आएंगी, कहेंगे पुप्पो आप कब आएंगी, तो मम्मी ने कहा कि उनको बोलो कि पुप्पो मैं आपसे बहुत उदास हो गई है, कहती मैं ये क्यों बोलूँ अब उसको मैं याद ही नहीं, छोटी सी है, मैं जब गई थी पिछले वो बहुत छोटी थी, तो वो हमने उसका कल से शायद 10 दफ़ा सुना है कि मैं क्यों बोलूँ ये कि मैं नहीं उदास। तो मैंने उसका ये जुमला इतनी दफ़ा सुन लिया कि माँ कह रही है बोलो, कहती मैं नहीं बोलूँगी, तो जब जाऊँगी तो फिर उसको प्यार आ जाएगा। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो हम सब तो हम तो दोनों की बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, होती है दिल में कहते आ गए मुसीबत में, मान चलो सीधे से मिटो, फिर जब अंदर आते हैं तो कहते वो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। तो बचपन सच्चा होता है, कभी आप अपने बच्चों से सीखें, यकीन करें इतना कुछ सीखने का होता है बच्चों से कि जिसकी कोई पनाह नहीं। तो बच्चे बचपन में जब बोलते हैं सच बोलते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी इसलाह की खातिर कि बच्चों को कभी झूठ ना सिखाएं, हम खुद उनको सिखाते हैं बोल दो ये बोल दो, बहुत छोटे बच्चों को बोल देते हैं आओ ये बोलो ये करो प्यार करो, जैसे अब जबरदस्ती मैं उसे को नहीं बोलो मैं उदास थी तो फिर मैं झूठ सिखा रही हूँ ना उसको। तो हमेशा मासूमियत पे रहें, और जिस बंदे के अंदर मासूमियत होगी ना आप देखेंगे कि उसके अंदर बच्चों वाला एक बड़ापन होगा। तो बहरहाल हज़रत ईसा बचपन में बोले, ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी थी, और ये बोलना हकीकत में उस वक़्त एक माँ की बेगुनाही थी। आप वाक्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब सूरत मरियम में, कि हज़रत मरियम लेके आ गई बच्चे को और लोगों ने कहा कि ये कहाँ से आ गया, तो माँ कहने लगी कि मैं तो नहीं बोलूँगी, अल्लाह का हुक्म ये था कि जब लोग तुमसे बोलें तो क्या कहना, फ़ाशारत इलैहि, इशारा कर दिया बच्चे की तरफ, कालो कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, कहने लगे हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो कि एक बिल्कुल बच्चा से तेरी गोद में। देखिए माँ खामोश रही, बच्चा बोला, आज भी अगर माएं बेगुनाह होंगी ना, आज अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की, तो जिस तरह का ईसा अलैहि सलाम ने बेबी मरियम की बेगुनाही साबित की थी, हमारे बच्चे भी हमारी करेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया है बच्चों की सूरत में, तो इनकी हिफाजत करनी है। फिर दूसरी जो बात है, ये बड़ी अजीब है, वकाहला कहूलत में भी बोलेंगे। तो ये तो सारे ही बोलते हैं, 40 साल की उम्र में तो बल्कि बहुत ही बोलते हैं, सठियाने भी लग जाते हैं, बीवी पे भी गुस्सा आ रहा होता है और हर वक्त है। तो क्यों यहाँ कहलन की बात हुई? ये मुफस्सरीन का नुक्ता है। बात वाज़ है, मेरा सवाल समझ आ रहा है आपको? ठीक है कि सारे ही बोलते हैं, गोद की बात तो अलग थी, वो तो बोल दी, तो कहूलत में तो सब बोलते हैं। तो अब यहां से देखिए कुरान का इजाज़ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने की तरफ ये निशानी है। आगे आ रहा है वाकया, वही सुनाऊंगी कि हजरत ईसा को लोगों ने क्यों मारा और क्यों मारने की कोशिशें की। लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहूलत का तذکرہ इधर किया, और कहूलत की उम्र 40 साल के करीब होती है, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे 33 ईयर्स की एज में उठा लिया गया था। ठीक है, तो अभी दुनिया में तो उन पे कहूलत की उम्र आई नहीं थी। बात वाज़ है, तो उलमाए कराम कहते हैं कि अब यहाँ इशारा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत वापस आएंगे। 100 से ज़्यादा हदीसें इस पे मौजूद हैं, क्लीन एंड क्लियर फैक्ट्स की तरह, के हज़रत ईसा दुनिया में आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, उनके हाथों से बहुत सारे फितने ख़त्म होंगे, यहूद या तो कत्ल हो जाएंगे या उनके हाथों पे इस्लाम कबूल करेंगे, सारे नसारा क्रिश्चियंस जो उस वक़्त थे वो सब हज़रत ईसा के साथ मुसलमान होंगे। फिर हज़रत ईसा अपनी तबई ज़िंदगी बसर करेंगे, शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, कितना अरसा होगा, 40 का अदद है ये अल्लाह को पता है, और फिर बिलाखिर उनकी वफ़ात होगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। ये सारी हदीसें मौजूद हैं। ये अलग बात है कि आज मुसलमान कहने वाला अपने आप को एक फ़िरका, इसको मानते ही नहीं, और उनके ख्याल में ईसा आके चले भी गए और मुकाम लुद पे आ भी गए और उनके नाम पे एक पूरा मजहब बना हुआ है आज के दौर में। जहाँ बात आएगी तो वहाँ करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ कहूलत है कि उनके वापस आने में, ये पहली दलील है। एक और दलील भी मिलेगी आपको आज ही के सबक में इंशाल्लाह ताला। तो कहा कि ये आएंगे और फिर होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पे आसमानों पे ले जाएंगे, तो आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा था, जिंदा देखा वहाँ। बिल्कुल हमारा ईमान है कि जैसे आज हम इस दुनिया में हैं, वैसे वो वहाँ मौजूद हैं। वो आयत के साथ आगे आपको उसकी डिटेल्स लिखाऊंगी, बड़ी हैरत होगी आपको कि किस तरह के हालात दीन के काम में आ जाते हैं। बहरहाल, वमिनस सालेहीन, और वो नेकुकारों में से होगा, यानी सालेहीन में से होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नेक होंगे, उनके अंदर कोई बदकारी का शैबा नहीं है।